Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya. Naram Chaiva Narottamam. Devim Sarasvatim Vyasam. Tato Jayamudirayet. Nashtapaye Shabadesho. Nityam Bhagavad Sevaya. Bhagavad Uttama Shloke. Bhaktir Bhavati Naishtiki. Hare Krishna. So today the class will be in Hindi. So for the English speaking, the class will be in Balaram Hall by His Holiness Gogovinda Maharaj. So English class in Balaram Hall and here Hindi class. Tumare piche bolye. Pravepamana Dharani Nishamya Udayudham Cha Tam Gau Sati Upadravat Bhita Mrigi Iva Mrigayo Druta Prave Pamana Dharani Nishamodayudam Chatam Gausatyapadravadbita Mrigiva Mrigayudruta Prave Pamana Dharani Nisham Yodayudam Chatam Gausatya Padravadbiti Mrigiva Mrigayudruta Prave Pamana Dharani Nisham Yodayudam Chatam Gausatya Padravadbita Mrigiva Mrigayudruta. Bolye. Pravepamana Dharani Nisham Yoyadu Yon Chatam Gausatya Pradavad Bita Mrigiva Mrigayudruta Pravepamana Dharani Nisham Yodayudam Chatam Gosatya Padravad Gita Mrigiva Mrigayudruta Prabhe Pamana Dharani Nisham Yodayudam Chatam Gosatya Pradavad Gita Mrigiva Mrigayudruta Mate Prabhe Pamana Dharani Nisham Yodayudam Chatam Gosatya Pradavta Mrigiva Mrigayudruta Pravepamana कंपते हुए धरणी पृथ्वी निशम्या देखकर उदयुधम धनुष बाण लेकर च भी तम राजा को गाव गाय सती बनकर उपद्रवत भगने लगी। भीता अत्यधिक डरी हुई मृगी एवं हिरानी के समान मृगयो शिकारी को द्रुता पीछा की गई। अनुवाद तत्पर्या शिले ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की अनुवाद। जब पृथ्वी ने देखा कि राजा पृथु उसे मारने के लिए धनुष बाण धारण कर रहे है तो वो भय के मारे कंपने लगी। उसके बाद वो उसी प्रकार भागी जिस प्रकार शिकारी द्वारा पीछा किए जाने पर हिरणी तेजी से भागती है। राजा के भय से पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर लिया और भागने लगी। तत्पर्य जिस प्रकार मतक की कोक से बालक तथा बालिकाएं उत्पन्न होती है उसी प्रकार दाती की कुक्षी से विभिन्न रूपों में सभी प्रकार की जीवात्माएं उत्पन्न होती है। इस प्रकार माता पृथ्वी अनंत रूप धारण कर सकती है। इस बार पृथ्वी के क्रोध से बचने के लिए पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया। चूंकि गाय अभद्य है अतः पृथ्वी ने ठीक ही समझा कि पृथु के तीरों से बचने के लिए गाय का रूप धारण किया जाए। किंतु पृथु इस रहस्य को समझ गए अतः उन्होंने गौरव पृथ्वी का पीछा करना नहीं छोड़ा। ओम अज्ञान तिमिदंदस्या ज्ञानंजन सलखया चक्षुरन्मीलितं येनं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सायं रूपकदामयं ददाति सापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगमा भगवतन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावरूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगना ललिता श्रीविशगन्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिककांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामामि हरि प्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च प्रेतानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव जरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो हरे रामो राम रामो हरे हरे। सब बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम रामो हरे हरे। प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम रामो हरे हरे। Pavepamanadarani Nishan Yodayudam Chatam Go Satya Pradavad Bita Mrigiva Mrigayudruta. जब पृथ्वी ने देखा कि राजा प्रीतु उसे मारने के लिए धनुष बाण धारण कर रहा है तो वो भय के मारे कांपने लगी. उसके बाद वो उसी प्रकार भागी जिस प्रकार शिकारी द्वारा पीछा किए जाने पर हिरणी तेजी से भागती है. राजा के भय से पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर लिया और भागने लगी. तो यहां पर महाराज प्रीतु के बारे में चर्चा हो रहा है जो भगवान के शुद्ध वैष्णव है, जो भगवान के प्रतिनिधि है, जो भगवान के शक्तिवेश अवतार है. उनके जीवन चरित्र से हम बहुत कुछ सीख सकता है. आदर्श उदाहरण उन्होंने राजा के कार्य, तो ये राजा का शासन किए थे. और यहाँ पर इस प्रसंग में तो पृथ्वी पर कुपित होना यहाँ पर पदाता है मैत्रेय ऋषि विदुर को बताता है. और जैसा हम देख सकते हैं श्रीमद् भागवतम में तो मैत्रेय ऋषि दूसरे अपने गुरुजन से सुन लिया है इस प्रसंग में, और जो कुछ विदुर को बताता है उन्होंने सबसे पहले अपने गुरुजी से सुन लिया है. इसके बाद भजन करते हुए और उनके जो जिसे वर्णाश्रम के अनुसार सबको इस भौतिक जगत में देहधारी जीवात्म को अलग अलग कार्य करना है. गृहस्थ में आश्रम में रहते हुए, एक वर्ण में रहते हुए, लेकिन हमेशा ये समझकर कि हम कृष्ण के नित्य दास है. भौतिक स्थूल और लिंग शरीर से पृथक है पूर्ण रूप से, लेकिन दुर्भाग्यवश से हम इस भौतिक जगह में गिर गया है और देहात्म बुद्धि तो के प्रभाव से सोचता है मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं. हाँ, एक प्रकार से तो हमको भी ऐसा तो भी सोचना चाहिए, लेकिन हमको भी मालूम होना चाहिए कि इसके अलावा भी कुछ और है. आत्मा, आत्मस्वरूप का अनुभव करना है, आत्म साक्षात्कार ये उद्देश्य है जब मनुष्य शरीर प्राप्त होता है. मनुष्य को अनुभव करना है सिर्फ, तो सबसे पहले ज्ञान प्राप्त होता है भगवान है, हम भगवान के दास है, भगवान की सेवा करना चाहिए, तो ज्ञान प्राप्त होता है. लेकिन इसके बाद हमको जो हमने सुना है हमको ये भी करना है, भगवान की सेवा करना चाहिए. और जैसे युग धर्म जो होता है इसके अनुसार हमको चलना है. और युग धर्म है कलयुग में नाम कीर्तन है, तो हमको जप करना चाहिए, कीर्तन में भाग लेना चाहिए, और गुरु के आदेश के अनुसार हमको सब कुछ करना है. ऐसे करते हुए हम आगे जा सकते हैं और अपना आत्मा के स्वरूप अनुभव कर सकता है और भगवान का साक्षात स्वरूप अनुभव कर सकता है, उनके सच्चिदानंद स्वरूप. तो यहां पर तो मैत्रेय ऋषि उन्होंने सुन लिया था और ब्राह्मण थे और तो शास्त्र ज्ञान करते थे और दूसरों को भी बताते थे. ये ब्राह्मण के लक्षण है, शास्त्र का ध्यान करता है, दूसरों को भी बताता है. ठाकुर जी के अच्छे विग्रह की सेवा करता है, दूसरों को भी बताता है कि कैसे करना है. यज्ञ अनुष्ठान के बारे में उनको भी मालूम है. और ऐसे करते हुए भी ब्राह्मण को दान भी मिलता है लेकिन दूसरों को भी देता है. ऐसा ना है कि दान मिलता है और सब अपने जेब में रखता है और आपके जो घर के लिए इस्तेमाल करता है नहीं, लेकिन दूसरों को भी देना है। तो वैसे ही यहाँ पर उन्होंने तो प्रीतमराज के बारे में सुना और इसलिए विदुर जी को बताते थे शिशि गणिताए भगवान की, शिशि कृष्ण बलराम दोनों भाइयों की, शिशि राधा श्याम सुंदर जुगल की, श्रील प्रभुपाद की। तो यहां पर बताता है कि प्रीतु ने देखा कि पृथ्वी देवी जो सब मनुष्य को देना है नहीं देती थी, जैसे हमको रहने के लिए बहुत कुछ चाहिए और जैसे शुद्ध जल और जैसे फल, पेड़ों के फल हमको चाहिए और सब्जियां और चावल गेहूं ये सब कुछ हमको चाहिए, और ये लेते हुए बना के भगवान को अर्पण करते हुए प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। और तो पृथ्वी देवी सब कुछ देती है, लेकिन अगर लोग भगवान के आदेश अनुसार, शास्त्र के अनुसार, गुरुजन के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है तो ये सब चीज जो हमको चाहिए नहीं मिल सकता आसानी से, तो मुश्किल हो जाता है। तो उसी समय भी ऐसा हुआ क्योंकि यहाँ के लोग, उस समय के लोग तो भगवान की पूजा ना करते थे, इसलिए छिपा के रखती थी ये सब कुछ। और इसलिए वहां पर के मतलब ये राजा थे, ये नास्तिक थे, जैसे प्रीतु महाराज के पिताजी वेणु महाराज ये असुर थे, और दूसरे भी वहां पर बहुत सारे राजा थे जो भगवान की पूजा ना करते थे। लेकिन जो प्रजा उस समय के ज्यादा से ज्यादा सरल उनके स्वभाव था, और लेकिन क्योंकि राजा अच्छा तरह से देखभाल ना करता है इसलिए प्रजा पीड़ित हो जाते हैं, और इसलिए जो कुछ उनको मिलना था नहीं मिलते थे, इसलिए सब ये मनुष्य जो वहां पर उपस्थित थे पृथु महाराज के पास गए और उनसे बोले कि पृथ्वी देवी सब कुछ नहीं देती है, हम पीड़ित है, इसके लिए कुछ कृपा करके कीजिए। और उनको मालूम था कि ये पृथु महाराज एक परम वैष्णव है, महापुरुष है, इसलिए उनके पास गए, दयालु थे। तो ये सुनकर ये तुरंत अपना धनुष और बाण लेकर पृथ्वी देवी के पास पहुंच गए। तो ये महापुरुष भगवान को देख सकता है, देवता को भी देख सकता है, जैसे यज्ञ अनुष्ठान होता है आजकल भी होता है, पूर्व जैसे पूर्व युग जैसे यहाँ पर इस संबंध में है द्वापर या त्रेत युग, जब यज्ञ अनुष्ठान करते थे भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हो जाते थे, आते थे, और दूसरे देवता जैसे ब्रह्म जी शिव जी ये भी आते थे, पृथ्वी देवी भी। लेकिन आजकल जो प्रीत जो है तो कलयुग में तो शुद्ध वैष्णव मिलना और शुद्ध ब्राह्मण जो अच्छे तरह से सब कुछ कर रहा है ये दुर्लभ है, और इसलिए तो फिर भी आवाहन तो होता है ठाकुर जी के और देवता के, और हमको भी मालूम है जब शुद्धता है तो ये भी आ जाता है, लेकिन सिर्फ शुद्ध वैष्णव देख सकता है जब आ जाता है, दूसरे लोग नहीं देख सकता है। और कोई है जब यज्ञ अनुष्ठान होता है यहाँ पर कोई देख सकता है, शिव जी देख सकता है, किसने ने देखा यहाँ पर? आपने देखा है, शिव जी ब्रह्म जी देखा है, जब कोई यज्ञ अनुष्ठान होता है या विष्णु आ जाता है, दुर्लभ है। लेकिन पृथ्वीराज के समय विष्णु आए थे, ब्रह्म जी आए थे, शिव जी आए थे, और इसलिए पृथ्वी देवी को देख सकते थे। और जैसे पवित्र नदी है, जैसे यमुना जी, यमुना देवी एक देवी है, गंगा देवी है, नदी है, बती है, लेकिन देवी भी है, और शुद्ध वैष्णव भी देख सकती है, देवियों को देख सकता है। तो पृथ्वी देवी के पास पहुंच गए और धनुष बाण लेकर तो भयभीत होकर कंपने लगी पृथ्वी देवी और भग गए डर के मारे। और उनके पीछे पृथ्वी महाराज उनके पीछे चले गया। और इसके बाद उन्होंने सोचा पृथ्वी देवी के वो तो मेरे को मारना चाहता है, इसलिए अपना रूप बदल किया और गाय का रूप धारण किया है पृथ्वी देवी। देवी को बाना भी उचित नहीं है, और वास्तव में भी बहुत मुश्किल है, सिर्फ जो शक्तिशाली है कर सकता है। ये शक्तिशाली है देवता और देवियां भी, उनको मार डालना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इतने शक्तिशाली थे पृथ्वी महाराज, इसलिए उन्हें सोचा पृथ्वी देवी मुझे वहां से भाग जाना, और उन्हें सोचा भी गाय का रूप धारण करना है, क्योंकि गाय मरदाना उचित नहीं है, यह एक पाप है, लेकिन आजकल भी होता है, यहां पर भी, इस देश में भी होता है, उत्तर प्रदेश में भी होता है, वृंदावन में भी गाय ले जाता है कोई असुर लोग जो है उनको मारने की चेष्टा कर रहा है। ये दुख की बात है, बहुत बड़े दुख की बात है, लेकिन कलयुग में है और पहले भी ऐसा होता था। लेकिन गाय की रक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, और हाँ, लेकिन अभी तो सरकार तो कोशिश कर रहा है और भक्त लोग भी कोशिश कर रहा है गाय की रक्षक के लिए, क्योंकि ये जरूरत है। शास्त्र में भी लिखा है कि गाय के रूप में तो देवता लोग भी वास करता है, पूजनीय है गोमाता, इसलिए हम कहते हैं गोमाता, और इसलिए गोपूजा भी होता है, विशेष करके गोवर्धन पूजा के समय, जैसे कृष्णा उन्होंने भी किया था। और कृष्ण भगवान आदि पुरुष परमेश्वर भगवान श्री कृष्णा सर्व सबसे शक्तिशाली है, मूल रूप है भगवान के, दूसरे भगवान के रूप जो है उनके विस्तार रूप है, मूल रूप कृष्णा है, सर ऐश्वर्य पूर्ण भगवान है, स्वयं भगवान है, लेकिन गोप के रूप में विलास कर रहे ब्रज में और गाय का देखभाल करता है, और भगवान तो है लेकिन खेल रहा है, बछड़े के साथ भी खेल रहा है, मित्र के साथ खेल रहे हैं, गोपियों के साथ विलास कर रहे हैं। लेकिन हमको भी दिखाने के लिए कि गाय के रक्षक करना है, गाय की पूजा करना है, उन्होंने खूब किया और पिताजी को बताए थे कि गाय के रक्षक करना है, गोमाता की पूजा करना है, तो ये शास्त्र के अनुसार है। क्योंकि तो ये भी है कि गाय से बहुत कुछ मिलता है जो अनिवार्य है जीने के लिए, दूध देती है बच्चे के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है, इससे दिमाग बहुत अच्छा हो जाता है और शरीर के लिए भी अच्छा है दूध, इसलिए माता जी पहले अपना स्तन का दूध देती है पहले जब बच्चे छोटे है, लेकिन बाद में एक साल के बाद दो तीन साल के समय रोज रोज दूध पिलाती है बच्चे को, ये जरूरत है. और दूध से बहुत कुछ बनाता है, बन सकता है, जिससे ठाकुर जी की सेवा में रोज रोज ठाकुर जी की अभिषेक होता है. किससे? दूध से, दही से, घी से. और जब विशाल अभिषेक होता है, जैसे कृष्ण के जन्मदिन के जन्माष्टमी के दिन पंचगव्य अभिषेक होता है, पंचद्रव्य गाय से जो मिलता है, दूध, दही, घी, गोमूत्र, गोबर से. लेकिन गोमूत्र गोबर से तो अल्प मात्र से अभिषेक होता है, लेकिन होता है पंचद्रव्य से, गाय से अभिषेक होता है. ठाकुर जी से, ठाकुर जी के, भगवान के, या शुद्ध वैष्णव के, या राजा के अभिषेक जब होता है, जब तो राजा को उनके पाद में जब स्थापित करना है पिताजी युवराज को, और गुरुजान जब उस समय है राजा अभिषेक करते हैं, उसी समय भी पंचगव्य और पंचमृत का अभिषेक करता है राजा के. और जैसे काल हमारे जो प्रभुपाद के गुरु महाराज शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के व्यास पूजा मनाएंगे, तो जब विस्तार रूप से विधिवत पूर्वक उनके जो अभिभाव तिथि मनाता है, तो उनके चरण कमलों की अभिषेक भी होता है शुद्ध वैष्णव के. यह तिरुभाव तिथि है गौरगोविंद महाराज के, तो उसी समय भी पंचगव्य या पंचमृत अभिषेक होता है चरण कमलों के शुद्ध वैष्णव के. और तो शरीर के लिए भी बहुत अच्छा है ये. और ये ब्राह्मण जो है, जो पुरोहित जो है, और जब कोई विशाल यज्ञ होने वाला है, तो ये भी कभी कभी यज्ञ अनुष्ठान से पहले दूध दही लेकर नाता है. इससे शरीर की पुष्टि होता है, और ये भी दिमाग और मन शांत हो जाता है, और अच्छी तरह से मन और इंद्रिय वश में रख सकता है, और अच्छी तरह से यज्ञ अनुष्ठान कर सकता है विधिवत पूर्वक. और दूध से बहुत कुछ बनता है, जैसे मिठाई, संदेश, रसगुल्ला, बर्फी, खीर भी बनाता है, ठाकुर जी को लगाता है, और कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है मिठाई. और दही से भी और पनीर भी बनाता है, पनीर से भी मिठाई बनाता है, और सब्जी में देता है, और सब कुछ बनाते ठाकुर जी के लिए सब्जियां चौंच पहले लगाता है. तो इसे तो घी से सब कुछ बनाता है सब्जियां, ये अत्युत्तम है. और चपाती के ऊपर घी देता है, और चावल में इसमें भी घी देना है, अन्यथा भगवान को अर्पण नहीं कर सकता है शास्त्र के अनुसार. इसमें घी देना ही है, अन्यथा भगवान अर्पण नहीं करते, ग्रहण नहीं करते है. तो और इसके बाद भी गौमूत्र शरीर के लिए, अगर बीमारियां है तो गौमूत्र लेकर, गोबर लेकर, और औषधीय मिला के दवाई बनता है, बनाता है, और ये बहुत लाभदायक है शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत सारी दवाएं है. और इसके बाद यज्ञ के अनुष्ठान में भी सूखे जो गोबर जो है ये भी जलाता है, और जब यज्ञ कुंड सजाता है तो लेपता है यज्ञ कुंड, और गार पे भी पहले ऐसा हो ऐसा करते थे, तो गार के अंदर गार के बाहर तो लेपना है गोबर से, इसमें भी मिट्टी मिला के. तो क्योंकि ये शुद्ध है, गाय सत्व गुण में है, सात्विक है, और जो कुछ हम मिलता है ये सात्विक है, शुद्ध है. और जब ये हम ग्रहण करते हैं, भगवान की सेवा में लगाता है, तो उस वस्त्र पर तो पहुंच सकता है सत्वा और ये राजगुण और तमगुण चोर सकता है, इसके बाद विशुद्ध सत्व आध्यात्मिक अवस्था पर पहुंच सकता है। इसलिए गोरक्ष बहुत महत्वपूर्ण है और गो सेवा करना ही चाहिए। ये भी कहता है ब्रज में ब्रिजवासियां साधु लोग, अगर कृष्ण के पास जाना है, कृष्ण लीला में प्रवेश करना है तो गो सेवा करना चाहिए। गो सेवा के बिना कृष्ण लीला में प्रवेश करना संभव नहीं है। तो लेकिन यहां पर तो उनके पीछे पड़ गए और पृथ्वी ने देखा थी कि पृथ्वी देवी काय का रूप धारण किया है, लेकिन फिर भी उनके पीछे गए, क्योंकि यह है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे कोई असुर लोग भी है, जैसे कृष्ण के समय भी, ये अलग अलग ये योग के बल से अलग अलग रूप धारण कर करता है। और आजकल भी ऐसा होता है, कभी कभी कोई लोग जो वास्तव में भगवान के सेवा में लीन नहीं है, लेकिन सन्यासी का रूप धारण करता है और भिक्षा मांगता है दिखाने के लिए, मैं तो भगवान के भक्त हूं, और इसलिए सोचता है कि ये धारण करके मैं कुछ मिल सकता हूं पेट भरने के लिए। लेकिन सन्यास धारण करने के लिए ये सिर्फ भजन करने के लिए, प्रचार करने के लिए है। तो प्रसाद का चंद्र करने जरूरत नहीं है। तो इसलिए उनके पीछे गए और लेकिन इसके बाद पृथ्वी देवी गाय के रूप में विनम्र भाव में निवेदन किया है, हे महाराज, मैं तो भगवान की सेवा में लीन हूं, मैं निर्दोष हूं, और सब बताए कि क्यों छिपा के रख दिया है ये सब औषधियां, क्योंकि उस समय लोग भगवान को नहीं मानते थे। और ये समाचार प्रीतु महाराज भी इस समस्या का हाल निकाला और बाद में इसके बारे में सुनेंगे। तो इससे हम समझ सकता है श्लोक तात्पर्य में कि हमको गाय का और जैसे देवता और देवियां को आदर पूर्वक उनकी सेवा करना चाहिए वास्तव में, और उनको उनकी रक्षा करना चाहिए गाय के, और उनको दुख नहीं देना चाहिए। और तो प्रीतु महाराज अच्छे तरह से राजा का शासन करते थे, और इसके बाद पृथ्वी देवी के माध्यम से और उनके अच्छे तरह से तरीका दिया था महाराज प्रीतु, इससे सुखपूर्वक रह सकते थे ये प्रजा, और सुखपूर्वक रहते हुए भजन करते थे प्रीतु महाराज के आदेश के अनुसार, शास्त्र के अनुसार। ये भी कहा जाता है, तो लोग बोलता है तो जब तो पहले भोजन होना चाहिए इसके बाद भजन कर सकता है, लोग ऐसे बोलता है। ये भी सही बात है कि अगर भोजन नहीं मिलता है, प्रसाद नहीं मिलता है, तो भजन करना मुश्किल है। लेकिन वास्तव में जैसे सुबह उठ के सबसे पहले भजन करना चाहिए, ठाकुर जी की सेवा करना चाहिए, जप करना चाहिए, शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, इसके बाद भोजन प्रसाद लेना है, ये भी नियम है। तो लेकिन भजन करने के लिए अच्छे तरह से तो हमको सुखपूर्वक रहना चाहिए, अन्यथा थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन फिर भी सुख में या दुख में हमको कृष्णा हरि भजन करना चाहिए। क्योंकि इस भौतिक जगत में ऐसा हो जाता है, कभी सुख कभी दुख आ जाता है, जैसे ऋतुएं है। अब शरदी ऋतु है, मैं है शिशिर ऋतु, इसके बाद अभी वसंत ऋतु आएगी, इसके बाद गर्मी ऋतु, वर्षा ऋतु, हेमंत ऋतु, शरद ऋतु, अति चले जाती है। और वैसे ही दुख और सुख ये सब आता है और जाता चले जाता है, लेकिन हमको स्थिर होना चाहिए, निष्ठा के साथ, उच्च के साथ हमको गुरु गौरांग कृष्ण की सेवा करना चाहिए। तो और तो हाँ, और गोमाता की सेवा भी करना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। तो दो तीन शब्द गुरु गोविंद महाराज के बारे में बताएंगे और भक्ति सिद्धांत ठाकुर काल मनाएंगे, उनके अविवाह तिथि भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद और पुरुषोत्तम दास जो महाप्रभु के परिकार है, और गुरु गोविंद महाराज जो श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के घनिष्ठ शिष्य थे, बहुत बड़े प्रचारक थे, कालों की तिरुभाव तिथि भी मनाएंगे, दो दो तीन शब्द इसके बारे में बताएंगे। तो गौर गोविंद महाराज श्रील प्रभुपाद के जो आदेश शास्त्र के जो महत्वपूर्ण उपदेश जो है सिद्धरण करते हुए अपना जीवन में पालन करते थे और दूसरों को भी बताते थे कि कैसे ठाकुर जी की सेवा करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए आश्रम में, जो भी है ब्रह्मचारी के रिहास्तवाना प्रस्थ सन्यासी आश्रम, और कार्य कैसे करना चाहिए कृष्णा केंद्र में रखते हुए, अलग अलग नियम भी है ब्राह्मण के लिए क्षत्रिय वैश्य, तो कैसे सब कुछ करना चाहिए, ये प्रभुपाद के जो जिन्होंने ये ज्ञान प्राप्त किए थे प्रभुपाद से, इसके अनुसार सब कुछ कर रहे थे। लेकिन इसके बाद भी शिल भक्ति सिद्धांत ठाकुर शिल प्रभुपाद जो हमारे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के गुरु महाराज थे, उनके भाव भी लेकर, उनके ज्ञान भी जिन्होंने दिए थे ये भी लेकर अपना जीवन में तो धारण करते थे, पालन करते थे और इसके अनुसार चलते थे। क्योंकि गुरु जान काल देश पत्र के अनुसार सब कुछ कर रहा है, तो प्रभुपाद सबसे पहले पश्चिम देश में प्रचार करते थे और विदेशियों को उपदेश ज्ञान देते थे कि कैसे आगे जा सकता है सरल विधि से। लेकिन इससे पहले जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद यहाँ पर प्रचार करते थे भारतवर्ष में, और जो उनके शिष्य जो थे ते ये वैष्णव के परिवार से आए थे, ब्राह्मण के परिवार से आए थे, तो उनके तो उनको शिक्षा देते थे जिससे ये बहुत जल्दी उत्तम अवस्था पर पहुंच सके। और ये भी उनके पिताजी के भक्ति विनोद ठाकुर के धारा के अनुसार सब कुछ करते थे, इसलिए हमारे धारा हमारे नाम भी हमारे जो सिद्धांत जो है प्रभुपाद के भक्ति सिद्धांत के, इसका दूसरा नाम भी है भक्ति विनोद से आए हुए भक्ति विनोद धारा, जो प्रभुपाद तो दोनों ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, ये गुरु परंपरा के ज्ञान प्राप्त तो होता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर उनका नाम भी था सप्तम गोस्वामी, छह गोस्वामिया श्री रूप सी सनातन जीव गोस्वामी बत्ता गोपाल बत्ता रघुनाथ बत्ता रघुनाथ दास, उनके साथ ज्ञान प्राप्त होते हुए भक्ति विनोद ठाकुर उन्होंने अपने ग्रंथों में ये सब प्रकट किया है, जैसे जैव धर्म चैतन्य शिक्षामृत और उनके जो अलग अलग ये शरणागति और कल्याण कल्पतरु गीतावली उनके जो बहुत सुंदर महात्मपूर्ण ये गीत के किताबें उन्होंने ये सब अच्छे गोस्वामी के सिद्धांत उन्होंने इसमें दिया है और इसलिए उनका नाम भी रख गया है सप्तम गोस्वामी। ये सब लेकर श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रचार किए थे और वैसे कालिदेश पत्र के अनुसार वैसे ही श्रील प्रभुपाद पश्चिम देश में पहले इसके बाद यहाँ पर भी वापिस आते हुए हमारे बहुत महत्वपूर्ण सुंदर सबसे सुंदर मंदिर यहाँ पर स्थापित किया है मायापुर में भी और मुंबई में भी। तो श्रील गुरु गोविंद महाराज ये सब जो सार जो है सारग्राही वैष्णव एक वैष्णव सार जो भक्ति के शास्त्र के जो सार जो होता है गुरुजान के जो जैसे प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत जो सबसे महत्वपूर्ण वाक्य जो है उपदेश है सार ज्ञान का सार प्राप्त लेता है इसलिए वैष्णव का नाम सर्वग्राही वैष्णव। तो जैसे ये शुद्ध वैष्णव जैसे गुरु किशोर दास ये गुरु गोविंद महाराज सर्वग्राही वैष्णव है जो सार जो है प्रभुपाद के उपदेश ग्रहण किए थे लेकिन सिर्फ प्रभुपाद के ना लेकिन भक्ति सिद्धांत परम गुरुदेव के भी उपदेश का सार भी ग्रहण किए थे भक्ति विनोद ठाकुर के उपदेश ज्ञान का सार भी ग्रहण किए थे और पूर्वाचार्य के तो इसके सब लेकर तो आपने भी किताबे में तो प्रवचन में उन्होंने प्रकट किए थे। तो ये महान वैष्णव है वास्तविक प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत गुरु परंपरा के प्रतिनिधि थे। तो काल उनके और भक्ति सिद्धांत तो के अभिभावक अतिथि मनाएंगे तो इसलिए आज भी थोड़ा से उनके बारे में चर्चा कर रहा है उनके उपदेश क्या है उपदेश के सार क्या है हमको मालूम होने चाहिए जिससे हम आगे जा सकता है। और ये सब तो प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत और गुरु गोविंद महाराज में भी दो तीन चीज के बारे में जो रूप गोस्वामी भी बताते थे जो सबसे महत्वपूर्ण है हमको भी बताते थे जिसे भक्ति के 64 अंग है रूप गोस्वामी के अनुसार। सबसे पहले गुरुपाद आश्रय साधुगुरु के पास उनके आश्रय में रहना चाहिए उनके आशीर्वाद लेकर हमको सेवा करना चाहिए साधन भजन करना चाहिए। और इसके बाद रूप गोस्वामी बताता है कि क्या करना क्या ना करना है वैसे ही प्रभुपाद हमको भी बताया है उन्होंने। और तत्पश्चात बताता है कि पंच महत्वपूर्ण अंग है भक्ति के सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है पंच है। सबसे पहले भागवत श्रवण हमको कृष्ण के बारे में श्रीमद् भागवतम रोज रोज हमको इसका श्रवण करना चाहिए। प्रभुपाद ने बोला सुबह भागवतम और शाम को भगवद गीता और भक्ति सिद्धांत ठाकुर उनके सबसे प्रिय ग्रंथ था भक्ति सिद्धांत के चैतन्य चरितमृत जो चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र के बारे में है और उनके अंतिम दो तीन महीने शरीर त्याग करने से पहले दो तीन महीने से पहले रोज रोज दो तीन घंटे के लिए चैतन्य चरितमृत पढ़ते थे। तो हमको भी ये पढ़ना है तो इसका श्रवण करना चाहिए भगवत गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितमृत रोज रोज नित्य सेवा तो इसका श्रवण करना चाहिए रोज रोज। ये शुरुआत में सबसे महत्वपूर्ण यह है भगवत श्रवण गुरु वैष्णव के मुखरविंद से श्रवण करना चाहिए और इसके बाद हम सेवा कर सकता है हम अच्छे तरह से जप कर सकता है हम ठाकुर जी की सेवा कर सकता है, भजन कर सकता है, अन्यथा संभव नहीं है। तो इसके बाद ये भी, ये पहले, इसके बाद तो साधु संगा गुरु के सन्निधि में रहना चाहिए, और वैष्णव जो आज्ञा है उनके सन्निधि में रहना चाहिए, उनके पास जाना है, उनकी सेवा करना चाहिए, उनसे पूछताछ करना चाहिए जिससे हम आगे जा सकता है। ये साधु संग है, सिर्फ साधु के पास जाना, पैर छूना, आशीर्वाद दे दीजिए, ये पर्याप्त नहीं है। लेकिन जो बताता है इसका अभी पालन करना चाहिए। और इसके बाद तो प्रीतिपूर्वक मूर्ति सेवा, ठाकुर जी की सेवा करना भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी रोज रोज करना चाहिए, अन्यथा आगे जाना भी संभव नहीं है। और अनुभव करने की कृष्ण कृष्ण नाम बिना ये बहुत मुश्किल है, अगर ठाकुर जी की सेवा नहीं करता है। और इसके बाद अगर धाम में रह सकते अति उत्तम है, लेकिन जहां पर भी हो, दिल्ली में हो, पश्चिम देश में भी हो, अगर ठाकुर जी भी, ठाकुर जी की सेवा होता है, भगवत श्रवण होता है, भगवत का पाठ करता है, तो तब धामवास भी होता है। क्योंकि ठाकुर जी तो जैसे राधा कृष्ण की मूर्ति है, जहां पर भी हो जब उनकी सेवा करता है तो इसका मतलब है कि वहां तो अतीत की धाम में है, क्योंकि कृष्ण हमेशा ब्रज में है, जहां पर कृष्ण है जहां पर ब्रज धाम है। तो लेकिन इसका अनुभव भी करना है, जब भजन करता है गुरु के आदेश के अनुसार तो अनुभव कर सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है नाम कीर्तन, नाम कीर्तन से उत्तम अवस्था पर पहुंच सकता है। अगर ठाकुर जी की सेवा करता है, भगवत श्रवण करता है, साधु के संग में है, लेकिन नाम कीर्तन नहीं करता है तो आगे जाना संभव नहीं है, क्योंकि युगदार में है नाम कीर्तन है। तो रोज रोज जप करना है, महामंत्र के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबके पास जपमाला होना चाहिए और जप भी करना चाहिए। बहुत बार हम पूछते हैं आपके पास जपमाला है, तो पूछते हैं हाँ, वो जप करता है, और मेरे पास समय नहीं है। लेकिन समय तो नहीं चाहिए, कम से कम 16 माला जप करता है, ये कम से कम है, और अच्छे तरह से जप करना है, और कीर्तन में भी भाग लेना है। तो ऐसे कहते हुए भगवान का स्वरूप अनुभव कर सकता है, और अपना अनुभव और संबंध, नित्य संबंध कृष्ण के साथ अनुभव कर सकता है। और जब ये आत्म साक्षात्कार है, भगवान का साक्षात्कार है, तब शरीर छोड़ने के बाद कृष्ण लीला में प्रवेश कर सकता है, अन्यथा संभव नहीं है, अन्यथा फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो इसलिए हम अच्छी तरह से जप करना चाहिए हमको, और गुरु का देश का पालन करना चाहिए, ठाकुर जी की सेवा करना चाहिए, और गौ माता की सेवा करना चाहिए। पहले सब गाय रखते थे, ब्राह्मण भी उनके पास एक दो गाय थे, और क्षत्र भी गौशाला के देखभाल करते थे, और वैश्यों के तो उनके ये धर्म है गौ रक्षा, गाय का पालन करना, कृषि और जमीन पे तो सब्जी लगाना है, और गेहूं और चावल, और शुद्र भी कभी कभी एक दो गाय रखते थे, क्योंकि उनको मालूम है कि गौ सेवा महत्वपूर्ण है, और जब गौ माता संतुष्ट है भगवान भी संतुष्ट हो जाता है। तो इसी गौ सेवा करना चाहिए, अगर गाय रख सकता है अत्युत्तम है, लेकिन ये भी आजकल तो मुश्किल है, जिससे शहर में रहते, यहाँ पर भी वृंदावन में रहते, फ्लैट में रहते, कैसे गाय रख सकता है। मेरे पास तो जगह, लेकिन फिर भी मैंने भी सोचा कैसे गाय रख सकते है, इधर उधर जाता है तो कौन देखभाल करता है। लेकिन अगर गाय नहीं रख सकता और ऐसे गौ सेवा रोज रोज नहीं कर सकते, तो कभी कभी कम से कम गौ सेवा करना चाहिए, गौशाल में दान देना है, और गाय को कुछ खिलाना है, गुड़ या भूसा कुछ खिलाना है, देना है, तो गौ सेवा जरूर करना चाहिए। ऐसा करते हुए हम सुख पूर्वक रह सकता है और आध्यात्मिक मार्ग में आगे जा सकता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। शिशि गोनिताय।